दूसरा अंक, पहला दृश्य। हुसैन का काफिला मक्का के निकट पहुंचता है। मक्का की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। लोग काबा की मस्जिद के द्वार पर हुसैन का स्वागत करने को खड़े हैं। हुसैन, यह लो मक्का शरीफ आ गया। यही वह पाक मुकाम है जहां रसूल ने दुनिया में कदम रखे। ये पहाड़ियां रसूल के सजदों से पाक और उनके आंसुओं से रोशन हो गई हैं। अब्बास, काबा को देखकर मेरे दिल में अजीब सी धड़कन हो रही है, जैसे कोई गरीब मुसाफिर एक मुद्दत के बाद अपने वतन में दाखिल हो। सब लोग घोड़ों से उतर पड़ते हैं। जुबेर, आइए हजरत हुसैन, हमारे शहर को अपने कदमों से रोशन कीजिए। हुसैन सबसे गले मिलते हैं। हुसैन, मैं इस मेहमानबाजी के लिए आपका मशकूर हूँ। जुबेर, हमारी जाने आप पर निसार हों। आपको देखकर हमारी आंखों में नूर आ गया है और हमारे कलेजे ठंडे हो गए हैं। खुदा गवाह है, आपने रसूल पाक ही का हुलिया पाया है। आइए, काबा हाथ फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। सब लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं, स्त्रियां हरम में जाती हैं। अली असगर, अब्बा, इन पहाड़ों पर से तो हमारा घर दिखाई देता होगा। हुसैन, नहीं बेटा, हम लोग घर से बहुत दूर आ गए हैं, तुमने कुछ नाश्ता नहीं किया। अली असगर, मुझे भूख नहीं है, पहले मालूम होती थी लेकिन अब गायब हो गई। हुसैन, तो तुम यहीं रहो कि तुम्हें भूख ही न लगे। हबीब, या हजरत, आप भी जरा आराम फरमा लें, हमारी बहुत दिनों से तमन्ना है कि आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ें। जुबेर और अब्बास को छोड़कर सब लोग वजू करने चले जाते हैं। हुसैन, क्यों जुबेर, यहाँ के लोगों के क्या ख्यालात हैं? जुबेर, कुछ न पूछिए, मुझे यहाँ की कैफियत बयान करते शर्म आती है। यूँ जाहिर में तो सब के सब आप पर निसार होने के लिए कसम खाएंगे, बैयत लेने को भी तैयार नजर आएंगे, मगर दिल किसी का भी साफ नहीं। हुसैन, क्या दगा का अंदेशा है? जुबेर, यह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई, लेकिन इधर उधर की बातों से पता चलता है कि इनकी नीयत साफ नहीं। अजब नहीं कि यजीद दौलत और जागीर का लालच देकर इन्हें मिला ले, उस वक्त ये जरूर आपके साथ दगा कर जाएंगे। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप मदीने वापस जाएं। हुसैन, मुझे तो इनकी तरफ से दगा का गुमान नहीं होता। दगा में एक झिझक होती है जो यहाँ किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आती। दगा उसी तरह शक पैदा कर देती है जैसे हम दर्दी एतबार पैदा करती है। जुबेर, मगर आपको यह भी तो मालूम होगा कि दगा गिरगिट की तरह कभी अपने असली रंग में नहीं दिखाई देती। वह हाथों का बोसा लेती है, पैरों तले आँखें बिछाती है और बातों में शक्कर बरसाती है। अब्बास, दोस्त बनकर सलाह देती है, खुद किनारे पर रहती है पर दूसरों को दरिया में धकेल देती है। आप हंसती हैं और पर दूसरों को रुलाती है और अपनी सूरत को हमेशा जाहिद के लिबास में छिपाए रखती है। जुबेर, खुदा पाक की कसम, आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप जानते कि मैं हजरत हुसैन की इतनी इज्जत करता हूँ तो मुझ पर दगा का शक न करते। अगर मैं यजीद का दोस्त होता तो अब तक दौलत से मालामाल हो जाता। अगर खुद बैयत की नीयत रखता तो अब तक खामोश न बैठा रहता। आप मुझ पर यह सुभा करके बड़ा सितम कर रहे हैं। हुसैन, अब्बास, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी शर्म आती हैं। जुबेर सबसे अलग विलग रहते हैं, किसी के बीच में नहीं बढ़ते। एकांत में बैठने वाले आदमियों पर अक्सर लोग शुभा करने लगते हैं। तुम्हें शायद यह नहीं मालूम है कि दगा गोशे से सोहबत को कहीं ज़्यादा पसंद करती है। हबीब का प्रवेश। हबीब, या हजरत, मुझे अभी मालूम हुआ कि आपके यहाँ तशरीफ लाने की खबर यजीद के पास भेज दी गई है और मरवान यहाँ का नाजिम बनाकर भेजा जा रहा है। हुसैन, मालूम होता है मरवान हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। शायद हम जमीन के पर्दे में चले जाएं तो वहाँ भी हमें आराम न लेने देगा। अब्बास, यहाँ उसे उसकी शामत ला रही है, कलाम पाक की कसम, वह यहाँ से जान सलामत न ले जाएगा। काबा में खून बहाना हराम ही क्यों न हो, पर ऐसे रूह स्याह का खून यहाँ भी हलाल है। हबीब, वलीद हाजूल कर दिया गया, यहाँ का आलिम मदीने जा रहा है। हुसैन, वलीद की माजूली का मुझे सख्त अफसोस है, वह इस्लाम का सच्चा दोस्त था। मैं पहले ही समझ गया था कि ऐसे नेक और दीनदार आदमी के लिए यजीद के दरबार में जगह नहीं है। अब्बास, वलीद की माजूली मेरी शहादत की दलील है। हबीब, यह भी सुना गया है कि यजीद ने अपने बेटे को, जो आपका खैर ख्वाह है, नज़रबंद कर दिया है। उसने खुल्लम खुल्ला यजीद की बेइंसाफी पर एतराज़ किया था, यहाँ तक कहा था कि खिलाफत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यजीद यह सुनकर आग बबूला हो गया, उसे कत्ल करना चाहता था लेकिन रूमी ने बचा लिया। अब्बास, ऐसे जालिम का कत्ल कर देना ऐन सवाब है। हुसैन, अब्बास, यह खुदा की मंशा की दूसरी दलील है, यह उसकी बदनसीबी है कि तकदीर ने उसे मेरी शहादत के लिए वसीला बनाया है। अपने बेटे को कैद करने से किसी को खुशी नहीं हो सकती। जो आदमी अपने बेटे की जबान से अपनी तौहीन सुने, उससे ज़्यादा बदनसीब दुनिया में और कौन होगा। जुबेर, मेरे ख्याल में अगर आप कूफे की तरफ जाएं तो वहां आपको मददगारों की कमी न रहेगी। हबीब, या हजरत, मैं कूफा के करीब का रहने वाला हूं और कूफियों की आदत से खूब वाकिफ हूं। दगा उनकी खमीर में मिली हुई है, आप उनसे बचे रहिएगा। वे आपके पास अपनी बैयत के पैगाम भेजेंगे, उनके कासिद पर कासिद आएंगे और आपको चैन न लेने देंगे। उनके खतों से ऐसा मालूम होगा कि सारा मुल्क आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, पर आप उनकी बातों में हरगिज न आइएगा। भूल कर भी कूफा की तरफ रुख न कीजिएगा। मेरी आपसे यही अर्ज है कि काबा से बाहर कदम न रखिएगा। जब तक आप यहाँ रहेंगे, आप सब बलाओं से बचे रहेंगे। कूफा वाले वफादारी से उतना ही महरूम हैं जैसे चिड़िया दूध से। हुसैन, मैं कूफा वालों से खूब वाकिफ हूँ, तुमने और भी खबरदार कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। हबीब, मैं यही अर्ज करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर वे लोग रोते हुए आकर आपके पैरों पर गिर पड़े तो भी आप उन्हें ठुकरा दीजिएगा। इसमें शक नहीं कि वे दिलेर हैं, दीनदार हैं, मेहमानबाज हैं, पर दौलत के गुलाम हैं। इस ऐब ने उनकी सारी खूबियों पर पर्दा डाल दिया है। वजीफे और जागीर के लालच और वजीफे तथा जागीर की जब्ती का खौफ उनसे ऐसे कौल करा सकता है जिसकी इंसान से उम्मीद नहीं की जा सकती। हुसैन, हबीब, मैं तुम्हारी सलाह को हमेशा याद रखूंगा। जुबेर, हबीब, तुमने कूफियों के बारे में जो कुछ कहा वह बहुत कुछ दुरुस्त है, लेकिन तुम हजरत हुसैन के दोस्त हो, तुमसे कहने में कोई खौफ नहीं कि मक्का वाले भी इस मामले में कूफा वालों के भाई बंद हैं। इनके कौल और फेल का कोई एतबार नहीं। कूफे की आबादी ज़्यादा है, अगर वे दिल से किसी बात पर आ जाएं तो यजीद के दांत खट्टे कर सकते हैं। मक्का की थोड़ी सी आबादी अगर वफादार भी रहे तो उससे भलाई की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। शाम की 2000 फौज इन्हें घेर लेने को काफ़ी है। भलाई या बुराई किसी खास मुल्क या कौम का हिस्सा नहीं होती। वही सिपाह जो एक बार मैदान में दिलेरी के जौहर दिखाती है, दूसरी बार दुश्मन को देखते ही भाग खड़ी होती है। इसमें सिपाह की खता नहीं, उसके फेल की जिम्मेदारी उसके सरदार पर है। वह अगर दिलेर है तो सिपाह में दिलेरी की रूह फूंक सकता है, कम हिम्मत है तो सिपाह की हिम्मत को भी पस्त कर देगा। आप रसूल के बेटे हैं, आपको भी खुदा ने वही अक्ल और कमाल अता किया है। यह क्यों कर मुमकिन है कि आपकी सोहबत का उन पर असर न पड़े? कूफा तो क्या आप हक को भी रास्ते पर ला सकते हैं? मेरे ख्याल में आपको किसी से बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं। अब्बास, जुबेर, सलाह कितनी माकूल हो, लेकिन उसमें गरज की बू आते ही उसकी मंशा फौत हो जाती है। हुसैन, अगर तुम्हारा इरादा यहाँ लोगों से बैयत लेने का हो तो शौक़ से लो, मैं ज़रा भी दखल न दूंगा। जुबेर, या हजरत, मेरा खुदा गवाह है कि मैं आपके मुकाबले में अपने खिलाफत के लायक नहीं समझता। मैं यजीद की बैयत न करूंगा, लेकिन खुदा मुझे नजात न दे अगर मेरे दिल में आपका मुकाबला करने का ख्याल भी आया हो। हबीब, या इमाम, अगर तकलीफ़ न हो तो सहन में तशरीफ लाइए, अजान हो चुकी, लोग आपकी राह देख रहे हैं, सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। दूसरा दृश्य, यजीद का दरबार। यजीद जुहाक, मुआबिया, रूमी, हूर और अन्य सफासद बैठे हुए हैं। दो वेश्याएं शराब पिला रही हैं। यजीद, तुम में से कोई बता सकता है जन्नत कहाँ है? हूर, रसूल ने तो चौथे आसमान पर फरमाया। शम्स, मैं चौथे पांचवें आसमान का कायल नहीं, खुदा का फजल और कर्म की जन्नत है। रूमी, खुदा की निगाह कोई कब्रिस्तान नहीं है कि वहाँ मुर्दे दफन हों, जन्नत वहीं होगी जहाँ लाशें दफन की जाती होंगी। यजीद, उस्ताद तुम भी चूक गए, फिर जोर लगाना, अब की जुहाक की बारी है, कहिए शेख जी जन्नत कहाँ है? जुहाक, बतलाऊं इस शराब के प्याले में? यजीद, पते पर पहुँची पर अभी कुछ कसर है, जरा और जोर लगाओ। जुहाक, उस प्याले में जो किसी नाजनीन के हाथ से मिले। यजीद, लाना हाथ, बस वही जन्नत है। मैं गुलफाम हो और किसी नाजनीन का पंजे मरजान हो, इस एक जन्नत पर रसूल की हजारों जन्नतें कुर्बान हैं। अच्छा, अब बताओ दोजख कहाँ है? फूर, या खलीफा, आपको दीन हक की तौहीन मुनासिब नहीं। यजीद, फूर, तुमने सारा मजाक किरकिरा कर दिया, आंखों की कसम है तुम मेरी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं हो, सारा मजाक खाक में मिला दिया। यजीद के सामने दीन का नाम लेना मना है, दीन उन मुल्लाओं के लिए है जो मस्जिदों में पड़े हुए गोश्त की हड्डियों को तरसते हैं, दीन उनके लिए है जो मुसीबतों के सबब से जिंदगी से बेजार हैं, जो मुहताज हैं, बेबस हैं, भूखों मरते हैं, जो गुलाम हैं, दुर्रे खाते हैं। दीन बूढ़े मर्दों के लिए हैं, राण औरतों के लिए, दिवालिये सौदागरों के लिए है। इस ख्याल से उनके आंसू पूछते हैं, दिल को तकसीन होती है। बादशाहों के लिए दीन नहीं, उनकी नजात रसूल और खुदा के निगाह करम की मोहताज नहीं, उनकी नजात उनके हाथों में है। दोस्तों, बतलाना हमारा पीर कौन है? जुहाक, पीर मूंगा, कुष्ठ में साकी। यजीद, लाना हाथ, हमारा पीर साकी है जिसके दस्ते करम से हमें यह नियामत मैसर हुई है। अच्छा, कौन मेरे ख्याल का जवाब देता है? दोजख कहाँ है? शम्स, किसी सूदखोर की तोंद में। यजीद, बिल्कुल गलत। रूमी, खलीफा के गुस्से में। यजीद, मुस्किराकर, इनाम के काबिल जवाब है मगर गलत। किस, किसी मुल्ला की नमाज में जो जमीन पर माथा रगड़ते हुए ताकता रहता है कि कहीं से रोटियां आ रही हैं या नहीं। यजीद, वल्लाह खूब जवाब है मगर गलत। जुहाक, किसी नाजनीन के रूठने में। यजीद, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। लाना हाथ, दिल खुश हो गया वेश्याओं से। नरगिस, इस जवाब की दाद दो। जुहरा, शेख जी के हाथों में बोसा दो। वह गीत गाओ जिसमें शराब की बू हो, शराब का नशा हो, शराब की गर्मी हो। नरगिस, आज खलीफा से कोई बड़ा इनाम लूंगी। गाती है, हाँ खुले साकी दरे मैं खाना आज, खैर हो भर दे मेरा पैमाना आज, नाच करता झूमता मस्ताना वार, अब्र आता है सुए मैं खाना आज, वो सए लब हुस्न के सदके में दे, ओ बुते तरसा हमें तरसा ने आज, इश्क चश्मे मस्त का देखो असर, पाँव पड़ता है मेरा मस्ताना आज, मेरे सिरों की इलाही खैर हो, है बहुत मुश्तर दिले दीवाना आज, मुहतसिब का डर नहीं, बिस्मिल तुम्हें सुई मस्जिद जाते हो रंदाना आज। एक कासिद का प्रवेश। कासिद, अस्सलाम अलैक या इमाम, बिन जियाद ने मुझे कूफा से आपकी खिदमत में भेजा है। यजीद, खत लाया है? कासिद, खत इस खौफ से नहीं लाया कि कहीं रास्ते में बागियों के हाथ गिरफ्तार न हो जाऊं। यजीद, क्या पैगाम लाया है? कासिद, बिन जियाद ने गुजारिश की है कि यहाँ के लोग हुजूर की बैयत कबूल नहीं करते और बगावत पर आमादा हैं। हुसैन बिन अली को अपनी बैयत लेने को बुला रहे हैं। तीन कासिद जा चुके हैं मगर अभी तक हुसैन आने पर रजामंद नहीं हुए। अब शहर के कई रऊसा खुद जा रहे हैं। यजीद, बिन जियाद से कहो जो आदमी मेरी बैयत न मंजूर करे उसे कत्ल कर दें, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। रूमी, दुश्मन के साथ मुतलिक रियायत की ज़रूरत नहीं। जियाद को चाहिए कि तलवार का इस्तेमाल करने में दरेग न करे। हूर, मुझे खौफ है कि बगावत हो जाएगी। रूमी, सजा और सख्ती यही हुकूमत के दो गुर हैं। मेरी उम्र बादशाहत के इंतजाम में ही गुजरी है, इससे बेहतर और कारगर कोई तदवीर न नजर आई। खुदा को भी अपना निजाम कायम करने के लिए दोजख की ज़रूरत पड़ी। दोजख का खौफ ही दुनिया को आबाद रखे हुए है। उसका रहम और इंसाफ फकीरों और बेक्सों की तस्कीन के लिए है। खौफ ही सल्तनत की बुनियाद है। नरमी से सल्तनत बकार मिट जाता है, लोग सरकश हो जाते हैं, फसाद का बाजार गर्म हो जाता है। जियाद से कहना कत्ल करो और इस तरह कत्ल करो कि देखने वालों के दिल थर्रा जाएं। तीरों से छिदवाओ, कुत्तों से नुचवाओ, जिंदा खाल खिंचवाओ, लाल लोहे से दाग दो, जो हुसैन का नाम ले उसकी जुबान तालू से खींच ली जाए। वह सजा सजा नहीं जो सख्त न हो। यजीद, मैं इस हुक्म की ताईद करता हूँ, जा और फिर ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे आराम में बाधा न डालना। कासिद का प्रस्थान। हुसैन का कूफा आना मेरे लिए मौत के आने से कम नहीं। कसम है आँखों की वह कूफा न आने पाएगा अगर मेरा बस है। शम्स, ताज्जुब यही है कि कूफा वालों ने तीन कासिद भेजे और हुसैन आने पर राजी नहीं हुए। यजीद, तैयारियां कर रहा होगा। वलीद अगर मेरे चचा का बेटा न होता तो मैं अपने हाथों से उसकी आंखें निकाल लेता। उसने जानबूझकर हुसैन को मक्का जाने दिया, ये मदीना ही में कत्ल कर देता तो मुझे आज इतनी परेशानी क्यों होती? कौन जाकर उसे गिरफ्तार कर सकता है? हूर, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। यजीद, अगर तुम यह काम पूरा कर दिखाओ तो इसके सिले में मैं तुम्हें एक सूबा दूंगा जिस पर जन्नत भी फिदा हो। मेरी फौज से 1000 चुने हुए आदमी ले लो और जब आफताब निकले तो तुम्हें यहाँ से 20 फरसक पर देखें। हूर, इंशाअल्लाह। यजीद, जैसे शिकारी शिकार की तलाश करता है उसी तरह हुसैन की तलाश करना। बीहड़ रास्ते, अंधेरी घाटियाँ, घने जंगल, रेतीले मैदान सब छान डालना। दिन की फिक्र नहीं पर रात को अपनी आँखों से नींद को यूँ भगा देना जैसे कोई दीनदार आदमी अपने दरवाजे से कुत्ते को भगाता है। हूर, हुक्म की तामील करूँगा। स्वगत, यजीद बदकार है, बेदीन है, शराबी है मगर खिलाफत को संभाले हुए तो है। हुसैन की बैयत मुसलमानों में दुश्मनी पैदा कर देगी, खून का दरिया बहा देगी और खिलाफत का निशान मिटा देगी। खिलाफत कायम करना व देखना मेरा पहला फर्ज है। खलीफा कौन और कैसा हो यह बाद में देखा जाएगा। हूर का प्रस्थान। यजीद, नरगिस रिंदों में एक जाहिद था वह खिसका, अब कोई मस्त करने वाली गजल सुनाओ। काश सल्तनत की फिक्र न होती तो तुम्हारे हाथों शराब के प्याले पीता उम्र गुजार देता। नरगिस, खौफ से कांपती हुई बुलबुल मस्ताना गजलें नहीं गा सकती। शाख पर है तो उड़ जाएगी, कफस में है तो मर जाएगी। मैंने खौफ से गुलशन को आबाद होते नहीं वीरान देखा है। मेरा वतन कूफा है और मैं कूफियों को खूब जानती हूँ। उन पर शक्तियाँ करके आप हुसैन को बुला रहे हैं। हुसैन कूफे में दाखिल हो गए तो फिर आप हमेशा के लिए इराक से हाथ धो बैठेंगी। कूफा वाले रियायतों से, जागीरों से, वजीफों से, थपकियों से काबू में आ सकते हैं, सख्ती से नहीं। अगर एतबार न हो तो मुझ पर अपनी ताकत आजमा लो। अगर तुम्हारी दसों उंगलियाँ 10 तलवारें हो जाएं, तो भी आप मेरे मुंह से एक सुर भी नहीं निकलवा सकते। कूफा मुसीबत में मुब्तिला है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्रस्थान। तीसरा दृश्य। कूफा की अदालत, काजी और अमले बैठे हुए हैं। काजी के सिर पर अमामा है, बदन पर कबा, कमर में कमरबंद, सिपाही नीचे कुर्ते पहने हुए हैं। अदालत से कुछ दूर पर एक मस्जिद है, मुकदमे पेश हो रहे हैं। कई आदमी एक शरीफ आदमी की मुश्कें कसे लाते हैं। काजी, इसने क्या खता की है? एक सिपाही, हुजूर, यह आदमी मस्जिद में खड़ा लोगों से कह रहा था कि किसी को फौज में न दाखिल होना चाहिए। काजी, गवाह है? एक आदमी, हुजूर, मैंने कानों सुना है। काजी, इसे ले जाकर कत्ल कर दो। मुलजिम, हुजूर, बिल्कुल बेगुनाह हूँ। ये दोनों सिपाही मेरी दुकान से कपड़े उठाए लाते थे, मैंने छीन लिया, इस पर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। हुजूर, मेरे पड़ोस के दुकानदारों से पूछ लें, बेगुनाह मारा जा रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे तबाह हो जाएंगे। काजी, इसे यहाँ से हटाओ। मुलजिम चिल्लाकर, या रसूल, तुम कयामत के लिए मेरा और इस कातिल का फैसला करना। दोनों सिपाही उसे ले जाते हैं। मस्जिद की तरफ से आवाज़ आती है, या खुदा, हम बेकस तेरी बारगाह में फरियाद करने आए हैं, हमें जालिम के फंदे से आज़ाद कर। चार सिपाही 15-20 आदमियों की मुश्कें कसे कोड़े मारते हुए लाते हैं। काजी, इन पर क्या इल्ज़ाम है? एक सिपाही, हुजूर, ये उन आदमियों में है जिन्होंने हुसैन के पास कासिद भेजे थे। काजी, संगीन जुर्म है, कोई गवाह? एक सिपाही, हुजूर, कोई गवाह नहीं मिलता, शहर वालों के डर के मारे कोई गवाही देने पर राजी नहीं होता। काजी, इन्हें हिरासत में रखो और जब गवाह मिल जाए तो फिर पेश करो। सिपाही उन आदमियों को ले जाते हैं। फिर दो सिपाही एक औरत की दोनों कलाइयाँ बांधे हुए लाते हैं। काजी, इस पर क्या इल्ज़ाम है? एक सिपाही, हुजूर, जब हम लोग उन मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे थे जो अभी गए हैं, तो इसने खलीफा को जालिम कहा था। काजी, गवाह? एक औरत, हुजूर, खुदा इसका मुंह न दिखाए, बड़ी बदजबान है। काजी, इसका मकान जब्त कर लो और इसके सर के बाल नोच लो। मुलजिम औरत, खुदावंद, मेरी आंखें फूट जाएं जो मैंने किसी को कुछ कहा हो, यह औरत मेरी सौत है, इसने दाह से मुझे फंसा दिया, खुदा गवाह है कि मैं बेकसूर हूँ। काजी, इसे फौरन ले जाओ। एक युवक रोता हुआ, या काजी, मेरी माँ पर इतना जुल्म न कीजिए, आप भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, अगर कोई आपको माँ को बाल नोचवाता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? काजी, इस मलऊन को पकड़ कर 200 दुर्रे लगाओ। कई सिपाही आदमियों के कोल को बांधे हुए लाते हैं। काजी, इन्होंने खुदा के किस हुक्म को तोड़ा है? एक सिपाही, हुजूर, ये सब आदमी सामने वाली मस्जिद में खड़े होकर रो रहे थे। काजी, रोना कुफ्र है, इन सबों की आंखें फोड़ डाली जाएं। सैकड़ों आदमी मस्जिद की तरफ से तलवारें और भाले लिए दौड़े आते हैं और अदालत को घेर लेते हैं। सुलेमान, कत्ल कर दो इस मर्दूद मक्कार को जो अदालत के मसनद पर बैठा हुआ अदालत का खून कर रहा है। मूसा, नहीं, पकड़ लो, इसे जिंदा जलाएंगे। कई आदमी काजी पर टूट पड़ते हैं। काजी, शरा के मुताबिक मुसलमान पर मुसलमान का खून हराम है। सुलेमान, तू मुसलमान नहीं, इन सिपाहियों में से एक भी न जाने पाए। एक सिपाही, या सुलेमान, हमारी क्या खता है? जिस आका के गुलाम है उसका हुक्म न माने तो रोटियां क्यों कर चलें? मूसा, जिस पेट के लिए तुम्हें खुदा के बंदों को ईजा पहुंचानी पड़े उसको चाक कर देना चाहिए। सिपाहियों और बागियों में लड़ाई होने लगती है। सुलेमान, भाइयों, आपने इन जालिमों के साथ वही सलूक किया जो वाजिब था, मगर भूल न जाइए कि जियाद इसकी इत्तिला यजीद को जरूर देगा और हमें कुचलने के लिए शाम से फौज आएगी। आप लोग उसका मुकाबला करने को तैयार हैं? एक आवाज, अगर तैयार नहीं हैं तो हो जाएंगे। सुलेमान, हमने अभी तक यजीद की बैयत नहीं कबूल की और न करेंगे। इमाम हुसैन की खिदमत में बार बार कासिद भेजे गए मगर वह तशरीफ नहीं लाए। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? हानी, हम में से चंद खास आदमी खुद जाएं और उन्हें साथ लाएं। मुख्तार, हम लोगों ने रसूल की औलाद से के साथ बार बार ऐसी दगा की है कि हमारा एतबार उठ गया। मुझे खौफ है कि हजरत हुसैन यहाँ हरगिज न आएंगे। सुलेमान, एक बार आखिरी कोशिश करना हमारा फर्ज है। हम लोग चलकर उनसे अर्ज करें कि हम कत्ल किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, हमारी औरतों की आबरू भी सलामत नहीं। हमारी मुसीबत की कहानी सुनकर हुसैन को ज़रूर तरस आएगा, उनका दिल इतना सख्त नहीं हो सकता। मुख्तार, मगर वह आपकी मुसीबतों पर तरस खाकर आए और तुमने उनकी मदद न की तो सब के सब रुस्याह कहलाओगे। हमने पहले जो दवाएं की हैं उनका फल पा रहे हैं और फिर वही हरकत की तो हम दुनिया और दीन में कहीं भी मुंह न दिखा सकेंगे। खूब सोच लो, आखिर तक तुम अपने इरादे पर कायम रह सकोगे? अगर तुम्हारा दिल हामी भरे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन्हें खींच लाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल कच्चे हैं तो तुम अपनी जानें निसार करने को तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें खौफ है कि तुम लालच के शिकार बन जाओगे तो तुम उन्हें मक्के में पड़े रहने दो। हज्जाम, खुदा की कसम हम उनके पैरों पर अपनी जानें निछावर कर देंगे। हारिस, हम अपनी बदनामी के दाग मिटा देंगे। मुख्तार, खुदा को हाजिर जानकर वादा करो कि अपने कौल पर कायम रहोगे। कई आदमी एक साथ, अल्लाह अकबर, हम हुसैन पर फिदा हो जाएंगे। सुलेमान, तो मैं उनकी खिदमत में खत लिखता हूँ। खत लिखता है। हज्जात, इतना ज़रूर लिख देना कि हम आपके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता देकर आपसे अर्ज करते हैं कि हमारे ऊपर रहम कीजिए। हारिस, यह और लिख देना कि हम बेशुमार अर्जियां आपकी खिदमत में भेज चुके और आप तशरीफ न लाए। अगर आप अब भी न आए तो हम कल कयामत के रोज़ रसूल के हुजूर में आपका दामन पकड़ेंगे। हज्जाज, और कहेंगे, या खुदा, हुसैन ने हम पर जुल्म किया था, क्योंकि हम पर जुल्म होते देखकर वह खामोश बैठे रहे, तो उस वक्त आप क्या जवाब देंगे और रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? कीस, मेरे कबीले में 1000 जवान हैं जो हुसैन के इंतजार में बैठे हुए हैं। हज्जाज, शायद शाम तक जियाद कुछ आदमी जमा कर लें। हारिस, अभी वह खामोश रहेगा, यजीद की फौज आ जाएगी तब हमारे ऊपर हमला करेगा। शिमर, क्यों न लगे हाथ उसका भी खात्मा कर दें, किस्सा पाक हो। हारिस, वाह, अब तक वह यहाँ बैठा होगा। सुलेमान, मैंने सारी दास्तान लिख दी, कौन इस खत को ले जाएगा? शिमर, मैं हाजिर हूँ। सुलेमान, किसके पास ऐसी सारणी है जो थकान न जानती हो, जो इस तरह दौड़ सकती हो जैसे जियाद लूट के माल की तरफ? एक युवक, मेरे पास ऐसी सारणी है जो 3 दिन में इस खत का जवाब ला सकती है। यह खिदमत बजा लाने का हक मेरा है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मजलूम और कोई न होगा जिसकी माँ के बाल काजी के हुक्म से अभी अभी नोचे गए हैं। सुलेमान, बेशक तुम्हारा हक सबसे ज़्यादा है, यह खत लो और इसके पहले कि हमारा पसीना ठंडा हो मक्का की तरफ रवाना हो जाओ। युवक चला जाता है। आइए हम लोग मस्जिद में नमाज अदा कर लें। खत का जवाब 3 दिन में आएगा। हजरत हुसैन के आने में अभी 1 महीने की देर है। जियाद भी शायद उसके पहले नहीं लौट सकता। ये दिन हमें अपनी तैयारियों में सर्फ करने चाहिए, क्योंकि यजीद के खिलाफत का फैसला कुफा में होगा। या तो वह खिलाफत के मसनद पर बैठेगा या जाहिलों की इबादत का मजार बनेगा। अगर कूफा ने खिलाफत को नबी के खानदान में वापस कर दिया तो उसका नाम हमेशा रोशन रहेगा। सब जाते हैं। चौथा दृश्य, स्थान काबा, मर्दाना बैठक। हुसैन, जुबेर, अब्बास, मुस्लिम, अली असगर आदि बैठे दिखाई देते हैं। हुसैन, यह 5वीं सफारत है, 1000 से ज़्यादा खतूत आ चुके हैं, उन पर दस्तखत करने वालों की तादाद 15,000 से कम नहीं है। मुस्लिम और सभी बड़े बड़े कबीलों के सरदार हैं, सुलेमान, हारिस, हज्जाज, शिमर, मुख्तार, हानी, ये मामूली आदमी नहीं हैं। जुबेर, मैं तो अर्ज कर चुका कि मुसल्लम इराक आपकी बैयत कबूल करने के लिए बेकरार है। हुसैन, मुझे तो अभी तक उनकी बातों पर एतबार नहीं होता, खुदा जाने क्यों मेरे दिल में उनकी तरफ से दगा की शुभा घुसा हुआ है। मुझे हबीब की बातें नहीं भूलती जो उसने चलते चलते कही थी। मुस्लिम, गुस्ताखी तो है पर आपका उन पर शक करना बेजा है, आखिर आप उनकी वफादारी का और क्या सबूत चाहते हैं? वे कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, साफ लिखते हैं कि आपकी मदद के लिए 20,000 सूरमा तैयार बैठे हुए हैं, अब और क्या चाहिए? जुबेर, कम से कम मैं तो ऐसे सबूत पाकर पल की भी देर न करता। अब्बास, मुझे तो इन कूफियों पर उस वक्त भी एतबार न आएगा अगर उनके 20,000 आदमी यहाँ आकर आपकी बैयत की कसम खा लें। अगर वह कुरान शरीफ हाथ में लेकर कसम खाएं, तो भी मैं उनसे दूर भागूं। तारिक आता है। तारिक, अस्सलाम अलैक या हुसैन। हुसैन, खुदा तुम पर रहमत करे, कहाँ से आ रहे हो? तारिक, कूफा के मजलूमों ने अपनी फरियाद सुनाने के लिए आपकी खिदमत में भेजा है। आफ्ताब डूबते चला था और आफ्ताब डूबते आया हूँ, और आफ्ताब निकलने से पहले यहाँ से जाना है। मुस्लिम, हवा पर आए हो या तख्ते सुलेमान पर? कसम है पाक रसूल की कि मैं उस घोड़े के लिए 5,000 दीनार पेश कर सकता हूँ। तारिक, हुजूर घोड़ी नहीं साणनी है जो सफ़र में खाना और थकना नहीं जानती। हुसैन के हाथ में खत देता है। हुसैन खत पढ़कर, आह कितना दर्द भरा खत है, जालिमों ने दिल निकाल कर रख दिया है। यह कितना गजब का जुमला है कि अगर आप न आएंगे तो हम आकबत में आपसे इंसाफ का दावा करेंगे। आह उन्होंने नाना का वास्ता दिया है, मैं नाना के नाम पर अपनी जान को यूँ फिदा कर सकता हूँ जैसे कोई हरीस अपने ईमान पर फिदा कर देता है। इतना जुल्म, इतनी सख्ती, दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े औरतों की बेआबरूई, जरा जरा सी बातों पर लोगों का कत्ल किया जाना। अब्बास, अब मुझे सब्र की ताब नहीं है, मैं अपनी बैयत के लिए हरगिज न जाता, पर मुसीबत जदों की हिमायत के लिए न जाऊं, यह मेरी गैरत कमारा नहीं करती। मुस्लिम, या बिरादर आप इसका कुछ गम न करें, मैं इसी कासिद के साथ वहां जाऊंगा और वहां की कैफियत की इतिला दूंगा, मेरा खत देखकर आप मुनासिब फैसला कीजिएगा। हुसैन, तब तक यजीद उन गरीबों पर खुदा जाने क्या क्या सितम ढाए, उसका अजाब मेरी गर्दन पर होगा। सोचो जब कयामत के दिन वे लोग फरियादी होंगे तो मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा, जब वह मुझसे पूछेंगे कि तुझे जान इतनी प्यारी थी कि तूने मेरे बंदों पर जुल्म होते देखे और खामोश बैठा रहा, उस वक्त मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुस्लिम, मेरा जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। मुस्लिम, मुझे तो इसका यकीन है कि सुलेमान जैसा आदमी कभी दगा नहीं कर सकता। जुबेर, हरगिज नहीं। मुस्लिम, पर मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि पहले वहाँ जाकर अपना इत्मीनान कर लूँ। हुसैन, बच्चों को गैब का इल्म होता है, इसका फैसला अली असगर पर छोड़ दिया जाए। क्यों बेटा, मैं मुस्लिम के साथ जाऊँ या उनके खत का इंतजार करूँ? अली असगर, नहीं अब्बा जान, अभी मुस्लिम चाचा ही को जाने दीजिए, आप चलेंगे तो कई दिन तैयारियों में लग जाएंगे, ऐसा न हो इतने दिनों में वे बेचारे निराश हो जाएं। अब्बास, बेटा तेरी उम्र दराज हो, तूने खूब फैसला किया, खुदा तुझे बुरी नज़र से बचाए। हुसैन, अच्छी बात है। मुस्लिम, तुम सवेरे रवाना हो जाओ, अपने साथ 5 गुलाम लेते जाओ, रास्ते में शायद इनकी ज़रूरत पड़े, मैं कूफा वालों के नाम यह खत लिख देता हूँ, उन्हें दिखा देना। इंशा अल्लाह हम तुमसे जल्दी ही मिलेंगे, वहाँ बड़े एहतियात से काम लेना, अपने को छिपाए रखना और किसी ऐसे आदमी के घर उतरना जो सबसे ज़्यादा एतबार के लायक हो, मेरे पास एक खत रोजाना भेजना। मुस्लिम, खुदा से दुआ कीजिए कि वह मेरी हिदायत करे, मैं बड़ी भारी जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूँ, सुबह की नमाज पढ़कर मैं रवाना हो जाऊँगा, तब तक तारिक की साड़नी भी आराम कर लेगी। हुसैन खत लिखकर मुस्लिम को देते हैं, मुस्लिम दरवाजे की तरफ चलते हैं। हुसैन मुस्लिम के साथ दरवाजे तक आकर, रात तो अंधेरी है मुस्लिम, उम्मीद की रोशनी तो दिल में है। हुसैन मुस्लिम से बगलगी होकर, अच्छा भैया जाओ, मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगा, जो कुछ होने वाला है जानता हूँ, इसकी खबर मिल चुकी है, तकदीर से कोई चारा नहीं, नहीं जानता यह तकदीर क्या है, अगर खुदा का हुक्म है तो छुप कर सूरत बदल कर दगाबाजों की तरह क्यों आती है, खुदा क्या साफ और खुले हुए अल्फाज में अपना हुक्म नहीं भेजता, अपने बेकस बच्चों का शिकार टट्टी की आड़ से क्यों करता है, जाओ कहता हूँ, पर जी चाहता है उसे न जाने दूँ, काश तुम कह देते कि मैं न जाऊँगा, मगर तकदीर ने तुम्हारी जबान बंद कर रखी है, अच्छा रुखसत, उम्मीद है कि अल्लाह हम दोनों को एक साथ शहादत का दर्जा देगा। मुस्लिम बाहर चला जाता है, हुसैन आंखें पोछते हुए हरम में दाखिल होते हैं। जैनब, भैया आज फिर कोई कासिद आया था क्या? हुसैन, हाँ जैनब आया था, यजीद कूफावालों पर बड़ा जुल्म कर रहा है, मेरा वहाँ जाना लाजमी है, अभी तो मैंने मुस्लिम को वहाँ भेज दिया है, पर खुद भी बहुत जल्द जाना चाहता हूँ। जैनब, आपने एकाएक क्यों अपनी राय बदल दी? कम से कम मुस्लिम के खत के आने का इंतजार कीजिए, मैं तो आपको हरगिज न जाने दूंगी, आपको वह ख्वाब याद है जो आपने रसूल की कब्र पर देखा था? हुसैन, हाँ जैनब खूब याद है, और इसी वजह से मैं जाने की जल्दी कर रहा हूँ, उस ख्वाब ने मेरी तकदीर को मेरे सामने खोल कर रख दिया, तकदीर से बचने की भी कोई तदबीर है? खुदा का हुक्म भी टल सकता है, खिलाफत की तमन्ना को दिल में से मिटा सकता हूँ, पर गैरत को तो नहीं मिटा सकता, बेकसों की इमदाद से तो मुंह नहीं मोड़ सकता। सहरबानू, आप जो कुछ करते हैं उसमें खुदा और तकदीर को क्यों खींच लाते हैं? जब आपको मालूम है कि कूफा में लोग आपके साथ दगा करेंगे तो वहाँ जाइए ही क्यों? तकदीर आपको खींच तो न ले जाएगी? बेकसों की इमदाद जरूर आपका और आप ही का नहीं हर इंसान का फर्ज है, लेकिन आपके कुनबे की भी तो कोई खबर लेने वाला हो? इंसान पर दुनिया से पहले खानदान का हक होता है। हुसैन, जरा इस खत को पढ़ लो और तब कहो कि मैंने जो फैसला किया है वह मुनासिब है या नहीं। सहरबानू के हाथ में खत देकर, देखा इससे क्या साबित होता है, लेकिन जितने आदमियों ने इस पर दस्तखत किए हैं उसके आधे भी मेरे साथ हो जाएंगे तो मैं यजीद का काफी आतंग कर दूंगा। इस्लाम के खिलाफत इतना आला रुतबा है कि उसकी कोशिश में जान दे देना भी जिल्लत नहीं। जब मेरे हाथों में एक सियाहकार बेदीन आदमी को सजा देने का मौका आया तो उससे फायदा न उठाना पहले सिरे की पस्त हिम्मती है। घर में आग लगते देखकर उसमें कूद पड़ना नादानी है, लेकिन पानी मिल रहा हो तो उससे आग को न बुझाना उससे भी बड़ी नादानी है। सकीना, मगर अब्बा जान अब तो मुहर्रम का महीना आ रहा है, फूफी जान की बहुत दिनों से आरजू थी कि इस महीने में यहाँ रहती। हुसैन, तुम लोगों को ले जाने का मेरा इरादा नहीं है। जैनब, भैया ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ जाएं और हम यहाँ रहें, खुदा जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। सकीना, अब्बा जान दिल्लगी करते हैं और आप लोग सच समझ गई। कुलसुम, और कोई चले चाहे न चले, मैं तो जरूर ही जाऊंगी, मेरे दिल से लगी हुई है कि एक बार यजीद को खूब आड़े हाथों लेती। सकीना, मैं अपनी फतह का कसीदा लिखने के लिए बेताब हूँ। सहरबानू, आप समझते हैं कि हमारे साथ रहने से आपको तरद्दुद होगा, पर मैं पूछती हूँ, आपको वहाँ फंसा कर दुश्मनों ने इधर हमला कर दिया तो हमारी हिफाजत की फिक्र आपको चैन लेने देगी? जैनब, असगर हुड़क हुड़क कर जान दे देगी। सकीना, हम अपने ऊपर इस बदनामी का दाग लगा सकती हैं कि रसूल के बेटों ने तो इस्लाम की हिमायत में जान दिया और बेटियां हरम में बैठी रहीं। हुसैन, स्वागत। सहरबानू ने मार्के की बात कही, अगर दुश्मनों ने हरम पर हमला कर दिया तो हम वहां बैठे बैठे क्या करेंगे? इन्हें यहां छोड़ देना अपने किले की दीवार में शिगाफ कर देने से कम खतरनाक नहीं। रकट, नहीं मैं तुम लोगों को पर जबर नहीं करता, अगर चलना चाहती हो तो शौक से चलो।